अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय। कल गुरु पूर्णिमा है, इसके संबंध में मैंने कल व्यास जी का जीवन चरित्र और उसके साथ साथ में सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव महोत्सव के संबंध में हमने बतलाया। आज गुरु पूजा का क्या महत्व है, इस विषय पर हम लोग बोलेंगे। अभी श्रीमान भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज कुछ गुरु पूजा का क्या महत्व है इस पर कुछ बोली।
तत्व दर्शन का वर्णन करते हुए भरत महाराज ने जैसे लोग कि हे महाराज, संसार में लोग शांति के प्रयास में बहुत कुछ बात किया करते हैं। रघु गणी कर तपसा न जाते, न चेंज या निर्वापराध गृहाद्वा, न छंद सा नई व जलाल में सुर जाए, बिना महत पाद रजो भी सीखा। कि लोग जल की, अग्नि की, सूर्य की और देवताओं की पूजा करते रहते, कोई घर में रहते हैं तो कोई घर से बाहर निकल करके चले जाते हैं, और कोई वेद पाठ करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, शांति के प्रयास में लगे हुए हैं, परंतु दुनिया में उन किसी को भी शांति नहीं मिलती। बोले क्यों? जब तक महत पाद रजो ऋषि का महान पुरुष के पाद पद्म धूलि में अपने जीवन को उत्सर्ग न कर दे और अपने को अभिषेक न कर डाले, तब तक जीवन का मार्ग बदलेगा नहीं। क्योंकि श्रीमद् भागवत में एक तरफ देखें कि दैत्य दानवों का उदाहरण आता है और दूसरी ओर भक्तों का जीवन चरित, उनकी महिमा, उनके भक्ति का आदर्श सब दिखाया गया। कि जितने बड़े बड़े दैत्य दानव दुष्ट लोग आए हैं, उन लोगों ने कोई साधना करने में कमी नहीं रखी है, कहीं भक्तों से अधिक साधना कर ली है। कि हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, कंस, जरासंध आदि कोई भी ऐसे नास्तिक नहीं थे जो भगवान को नहीं मानते थे, विष्णु को नहीं मानते थे, या कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, शिव जी की पूजा अधिक रूप में, कोई देवी की पूजा और तपस्या में कठोर कठोर साधना और तपस्या कर ली है। परंतु क्या उन दैत्य दानवों का, असुरी लोगों का हृदय बदला है? कभी तो हृदय परिवर्तन, कभी भी उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। बड़ी बड़ी साधना करके वे लोग बड़े महा प्रभावशाली बने, बड़ी शक्तिधर हुए और उस शक्ति के बल पर उन्होंने संसार का नाश किया, गुजारा और सब को मार काट तहस नहस किया। परंतु उनका जीवन न तो परिवर्तन हुआ है, न ही दूसरों के लिए कोई कल्याणकारी हुआ है। बोले क्यों? उन्होंने कोई सदगुरु का आश्रय नहीं किया, उन्होंने किसी गुरु की सेवा नहीं की और उनके जीवन के मार्ग को नहीं बदला। परंतु दूसरे तरफ जब उदाहरण में आता है, दस्यु रत्नाकर जैसे वाल्मीकि मुनि, डकैती करना, लूट मार करना, मारना, काटना, पीटना, जो कुछ इतना जो इंद्र काम था, जो कुछ ऐसे नहीं किया वो, यानी सब कुछ उन्होंने कर लिया। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब नारद जी आए, उन्होंने उनको बदल दिया। तो नारद जी ने उनके जीवन के मार्ग को बदला, तब वाल्मीकि मुनि महान त्रिकालज्ञ ऋषि बन गए और महान पुरुष हो गए। इसी प्रकार भागवत के उदाहरणों में जितने भी भक्तों का चरित्र आया है, सर्वत्र श्री नारद जी के महिमा, नारद जी की हमारे कृपा करुणा का वर्णन आता है। उन्हीं पर जब उनकी कृपा हो गई, तब वे परिवर्तन। जीवन में जब तक गुरु की कृपा नहीं हो, गुरु सेवा नहीं करें, हमारा शरीर ऊपर से भले ही साबुन से, तेल साबुन से हमारे मैल पर मिट्टी छूट जाएगा, पर हृदय का मैल कभी नहीं छूटेगा। इसको छुड़ाने के लिए एकमात्र गुरु की आवश्यकता है। कि भगवान ने लिखा कि युग युगांतर से भगवान आते ही रहे हैं। कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुजुकुंद महाराज, महाराज मेरे इतने अवतार संसार में हुए हैं जो कि मैं भी कीर्ति नहीं कर सकता। भगवान के कितने अवतार आ रहे हैं और वे आते हैं तो दुष्ट दैत्य दानवों को मार काट करके फेंक जाते हैं, अश्वों का दमन करके प्रजाओं का पालन, धर्म की संस्थापना सभी काम करके जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण तक भी आए, उन्होंने सबको मार काट करके, इसी मथुरापुर में कितने करोड़ों सैनिकों की हत्या हो गई, सबको मार काट करके फेंकी। परंतु एक भी व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगा। मुक्ति दे दी भगवान ने, बोले जा मुक्ति में पड़े रहो। कोई भक्त बन करके उनकी सेवा में नहीं आया, किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। परंतु इस कलयुग में जो अपार महाप्रभु जी की करुणा है, अपार करुणा से जिन्होंने इस करुणा का दान संसार में वितरण कर दिया और उससे जीवों के हृदय को परिवर्तन किया, उन्हीं के जो कृपा करुणा में सिंचित ऐसे जो गुरु वर्ग हैं, विश्व जगत को बदल करके आ रहे हैं, सबके हृदय को पापी तापी दुराचारी चाहे कोई भी असुर नास्तिक, सबके हृदय को बदल करके परिवर्तन करके उनको भक्त बना करके भगवान की सेवा में लगाते हैं। अब देखा जाए श्रीमद् भागवत को ऊपर से नीचे तक घुमा करके कि देखिए जितने भगवान के अवतार आए किसी ने किसी असुर को बदल करके उनको भक्त बना दिया, उदाहरण है कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने मुक्ति दे दी, विषय संपत्ति दिया, सब कुछ दिया, परंतु उनकी जो अपार कृपा करुणा जो कि गुरु वर्ग पर प्रकाशित हुआ है उनकी के हृदय में, और वही कृपा घन मूर्ति संसार के जीवों को बदल करके परिवर्तन करके उनको भक्त बना करके भगवान के चरणों तक पहुंचाते। तो ये गुरु की अपार करुणा कृपा और किसी में संभव नहीं। जीवों के हृदय को बदलना बड़ा कठिन काम, और सब कुछ हो सकता है, सभी अपने अपने सुख के लिए व्यस्त हैं संसार में, कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी सिद्ध साधक सब तरह के पड़े हुए हैं, परंतु उनको देखिए क्या है, कर्मी बड़ा बड़ा यज्ञ कर रहा है, इतना बड़ा बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, उद्देश्य क्या है कि कर्म फल मिल जाए, शरीर का सुख हमें मिल जाए, उसके लिए दिन रात मार मिल रहे हैं। ज्ञानी ज्ञान साधना में लिप्त है कि मैं ब्रह्मों में लीन हो जाऊं, ब्रह्म बन जाऊं, यही बातें हैं। परमात्मा योगी परमात्मा में लीन होने के लिए प्रयासी हैं, संसार में रिद्धि सिद्धि चमत्कार और मुक्ति और परमात्मा लीन की ब्रह्म लीन यही सब लेकर के व्यस्त है। कहीं भक्त भी मिल जाएंगे तो वे क्या करते हैं, साधना करते हैं, भगवान की भक्ति भी कर लेते हैं। उनकी चाह में क्या होती है कि हमें वैकुंठ में मुक्ति मिल जाए, ये सब मुक्ति ले लेते हैं, वैकुंठ की प्राप्ति तक कर लेते हैं। और ये लोग सब अपने अपने हित के लिए अपने सुख के लिए प्रयासी हैं, कोई भगवान की सेवा करने को प्रयासी नहीं, और न अपना सुख छोड़ करके हम भगवान की सेवा करें और उनकी सेवा करते हुए उनको सुखी करें, ऐसा तो आज तक कहीं नहीं मिला। इसलिए गुरुवर्य क्या करते हैं, साधारण भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं, इतना अनुग्रह करते हैं, जैसे मठ मंदिर में आने से पहले ही प्रारंभिक शिक्षा हो जाती है, गुरु जी का उपदेश होता है, अन्ना विलासिता सुनना ज्ञान कर कि सारे अन्ना विलास को अपनी हृदय की कामनाओं को अपने सुख की लालसाओं को छोड़ो, जो कुछ करो गुरु की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। तो ऐसे जो गुरु पात्र को सबके हृदय को बदल करके भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, ये और कहीं मिलेगा। कितने बड़े बड़े ज्ञानी योगी तपस्वी सब बड़े 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 पड़े हुए हैं, बड़े बड़े साधु किसी व्यक्ति के हृदय को बदल करके भगवान की सेवा में पहुंचा दें, उनका जीवन कृतार्थ तो हो जाए और प्रभु की सेवा करके वे प्रसन्न हो, ऐसा नहीं हुआ। जो कि भागवत का उदाहरण क्या है, बड़े बड़े प्रेमी भक्त भगवान के प्रेमी भक्तों का उदाहरण क्या है, वे अपना सुख कभी नहीं चाहे, उन्होंने अपना सुख नहीं चाहा, उन्होंने सर्वस्व दिया भगवान की सेवा के लिए। प्रेम वही पर होता है जहाँ भगवान के सुख के लिए देख रहा है, अपना सुख नहीं देखता है, वह प्रेम होता है। जहाँ अपने सुख की चाह हो जाती है वहाँ पर स्वार्थ, वहाँ पर कामना वासना अपना सर्वस्व लेकर के पड़ा हुआ है। तो गुरु क्या करते हैं, अपराधित सदगुरु जो है ऐसे जीवों के हृदय को बदल बदल करके दुनिया में सारे विश्व में प्रचार करके सबको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। ये गुरु की अपार करुणा है। और एक चीज देखने को मिले, जैसे देखा जाता है कि हम संप्रदाय हैं, कौन से हमारे संप्रदाय का नाम हुआ है श्री ब्रह्म मात्र गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। अब देखा जाए परंपरा से जब कि चलते आ रहे हैं, श्रीमद् मध्वाचार्य से जितने भी लोग आए हैं, सभी बड़े बड़े आचार्य और बड़े बड़े धुरंधर सभी लोग आए हैं, हमारे सभी गुरुवर्ग, परंतु कि लोग कृष्ण की भक्ति करते थे। श्रीमद् मध्वाचार्य ने भी कृष्ण की स्थापना की। आज भी कर्नाटक के ग्रुप में है कृष्ण की भक्ति, परंतु उनमें भी लोग अधिकांश रूप में नारायण की उपासना करते हैं। इतने रूढ़िवादी होते हैं कि उनको समझाना भी बड़ा कठिन होता है, वो मानने को तैयार नहीं होते। यहाँ तक कि अभी अभी मेलबर्न में हमने देखा कि वो मध्य समुदाय के प्रवास पर और बड़ा तर्क वितर्क हुआ। मैंने कहा श्रीमद् मध्वाचार्य ने भागवत की टीका लिखी है, उन्होंने कृष्ण मूर्ति की स्थापना की है, आज भी कृष्ण पूजा हो रही है, तो मानने को क्यों नहीं तैयार है? फिर भी वही नारायण और कृष्ण सभी आगे नहीं बढ़ेंगे। नारायण के अवतार बनेंगे कृष्ण को, परंतु नारायण से ऊपर नहीं देखेंगे, चाहे कितना भी युक्ति और कितना तर्क रहे। फिर भी ऐसे रूढ़िवादी होते हैं जो कि लोग ऐश्वर्य भाव से भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो ऐश्वर्य भाव से करेंगे, कोई माधुर्य भाव से करता है और बहुत कम हो जाते। ये सभी चलता है ऐश्वर्य मिश्रा भक्ति, जो कि ऐश्वर्य प्रधान भक्ति उन लोगों ने की है, नारायण को कृष्ण को मान करके भक्ति की है। परंतु उसके पश्चात जबकि चैतन्य चरितामृत में देखने को मिलता है श्री माधवेंद्र कृपाजी आए, भक्ति प्रेम वृक्ष के अंकुर हैं, भक्ति रूपी प्रेम वृक्ष के अंकुर श्री माधवेंद्र कृपाजी। उस समय से उन्होंने क्या किया सबको कि भागवत के आधार पर जितने भी ब्रजजन हैं ब्रजवासियों के अनुगत में उनके भाव के लिए साधना करें। पहले लोग क्या करते थे चैतन्य चरितामृत में आदि चतुर्थ में जैसे वर्णन होता है, पहले के लोग डायरेक्ट भगवान की भक्ति करते थे, कृष्ण भक्ति हमें मिले और कृष्ण भक्ति के द्वारा हम अपना उद्देश्य साधित हो, अपना उद्देश्य मनोरथ पूर्ण हो जाए, इसके लिए लोग भजन पूजन करते। यहाँ तक की मुक्ति भी पा जाते थे और ऊपर के लोग तक कहीं ऐसे जमाए सेवा को प्राप्त होते थे, ऐसे जो भाव की सेवा उन्हें मिलती थी, इससे आगे और नहीं बढ़ पाए। परंतु श्री माधवेंद्र कृपाजी आकर के जहाँ पर कृष्ण भक्ति रस की बात कही वहां से शुरू हुआ कि राजानुग भक्ति में प्रवेश किए, राजात्मिक ब्रजवासी जनों के अनुगत में भाव की सिद्धि करे, डायरेक्ट भक्ति नहीं, यहाँ उन ब्रजवासियों के भाव के अनुगत में उनके भाव की प्राप्ति के लिए लोग भजन करने लगे, यहाँ से प्रेम भक्ति शुरू होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए, राधा भाव का आस्वादन किया और जगत को दिखाया, उनके मनोभीष्ट पूर्ण करने के लिए श्री रूप गोस्वामी पास ने उनके अंतरंग भाव को लिया और उन्होंने कहा कि इस तरह से जो राधा जी की सेवा करने वाले जो अंतरंग जन है उनके भाव को ग्रहण करें, ऐसे ऐसे भावों का विस्तार करते हुए जो कि विचारों को प्रकट करते। इस प्रकार के जो महान गुरु वर्ग जिनकी अपार करुणा है कि ऐसे भाव को और चमत्कार पूर्ण विचारों को भक्ति रस को प्रकट करने के लिए ऐसे जो महान गुरु आए हुए हैं उनकी समता कौन कर पाएगा। इसलिए जगत में ऐसे गुरु का आश्रय मिल जाए यही जीवन में सबसे बड़ा से बड़ा सौभाग्य होता है। आज एक करके एक करके मैं
बहुत श्रीमान माधव महाराज 10-15 मिनट कुछ बोलेंगे।
पद्म ओम विष्णुपाद অষ্টোত্তর শতাব্দী শ্রীমদ ভক্তি বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ এবং বিষ্ণুপাল হরিদাসাচার্য বর্য অষ্টোত্তর শতাব্দী শ্রীমদ ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজকে চরণ কমলমে অনন্ত কোটি শাস্তা নজর করে জীবন করতাম। তৎপশ্চাৎ সন্ন্যাসীবৃন্দ বৈষ্ণববৃন্দ মাতৃমণ্ডলীকে যথাযোগ্যরা দণ্ডবত প্রণাম ও অভিবাদন জ্ঞাপন করতাম। कल से गुरु पूजा प्रारंभ होगा। इस संदर्भ में श्री गुरुदेव कल से ही गुरु तत्व के ऊपर कुछ प्रकाश डाल रहे हैं। अभी आप लोग श्रीपाद विक्रमानंद जी से गुरु जी का गुरुत्व हमारे भजन राज्य में कहाँ है ये अभी दिखाया और उस पर आदेश हुआ इस पर कुछ आलोचना करने के लिए। हम सबसे पहले जानना चाहिए गुरु है कौन, उनका लक्षण क्या है, हम गुरुकरण क्यों करेंगे, इससे पहले कोई शास्त्र में प्रमाण है और जीवन में क्या प्रमाण है ये हमें देखना पड़ेगा। और वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है, सब लोग पास्टर से अनुकरण कर रहे हैं। इस विषय में पास्टरों का धारणा क्या है इस विषय में भी प्रकाश डालना चाहिए, तभी हमें क्लियर कंसेप्शन कर सकते हैं। गुरु के लिए शास्त्र में कहा गया श्रीमद् भागवतम में जिसको पुराण सम्राट कहा गया तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु शिष्य उत्तमं साते पारेत विश्रान्तं ब्रह्मोपसमाश्रयम्। गुरु है कौन, उसका लक्षण क्या है, लक्षण से हम पता कर सकते हैं गुरु ये है या नहीं है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, इसलिए हमें गुरु जी के पास जाना चाहिए। इसलिए त्रयावी घाता जिज्ञासा, जब हम किताबों से दग्धीभूत हो रहे हैं हमारा परम कल्याण कैसे हो हम कुछ समझ नहीं पाते हैं, सब किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, जो स्पिरिचुअल विषय में एक्सपर्ट है उसी को गुरु या आचार्य विषय कहा गया है। तस्मात् गुरु प्रपद्येत, कौन करेगा जिज्ञासु से उत्तम, जो उत्तम से क्या है इसको जानने के लिए जो आतुर है वही जाते हैं। उनका लक्षण का एक्सपर्ट का गुरु का लक्षण क्या है, साते पारेचर निष्णातम, ये शब्द ब्रह्म में यानी वेद आदि जो शास्त्र है उसमें एक्सपर्ट होंगे। शिष्य का या भक्त का किसी प्रकार का संदेह हो उसका शास्त्र से उदाहरण दे करके संदेह को दूर कर देते हैं। और उपसमाश्रयम, जगत के लोग जिस विषय में आसक्त हैं रचपच रहे हैं उससे अनासक्त होंगे और सर्वोपरि भगवत अनुभूति संपन्न होंगे, ऐसे लक्षण विशिष्ट हो तो ही सदगुरु हैं। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत शास्त्रज्ञ हैं, क्या गुरु हैं क्या शास्त्रज्ञ नहीं। जैसे कि कोई दूध पीना चाहते हैं और कोई एक गाय ले आए जिसमें बछड़ा नहीं है, जब तक गाय का बछड़ा न हो तब तक गाय दूध नहीं देती है। ऐसे केवल शास्त्र रहने पर अगर भगवत अनुभूति संपन्न न हो तो सदगुरु होने का योग्य नहीं है। और दूसरे पॉइंट में आ रहा हूं कि और युगों में कि लोग गुरुकरण किया कि हम कलयुग युग में करते हैं, हम सोचते हैं कि हम कोई कारोबार करने जाते हैं कोई मिलेगा होता है ब्रोकर होता है कोई दलाल होता है, क्या गुरु जी ऐसे हैं क्या। और हम इसकी थोड़ा गौर से देखें, जब आज कोई रियल एस्टेट करने जाए जमीन जमा खरीदने जाए कुछ भी करने जाए तो बीच में बिचौलिया है, गुरु जी ऐसे कौन है हमें राधा कृष्ण से मिला देते हैं, उसके हमारे और राधा कृष्ण के बीच में बिचौलिया है, ये ऐसे ही बिचौलिया है उनको पारमार्थिक सदगुरु कहा गया है। गुरु की कृपा के सिवाय हम भगवान की कृपा लाभ नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर, जो ही कलयुग में नहीं आप सत्योग युग में देखिए उधर भी गुरुकरण का बहुत सा उदाहरण है। जो नारद और व्यास का उदाहरण दिया गया है ये द्वापर युग का उदाहरण है और सॉरी ये सत्योग का उदाहरण है। द्वापर युग में लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण स्वयं गुरुकरण करके दिखाया सबको गुरुकरण करना जरूरी है। सदुग गोस्वामी पास हमने उसके अनुरोध ग्रंथ में दिखाया किसी समय कृष्ण गोपियां से मिलना चाहते हैं, गोपियां कहा ब्रजेंद्र नंदन मास्क श्याम सुंदर मस्त पिसो हमें मत छूना। छोटा क्यों भाई, क्या बात है? गोपी ने बताया तुम्हारा गुरुकरण नहीं हुआ है। जब तक किसी का गुरुकरण न हो उनके हाथ का छुआ पानी भी पवित्र नहीं होता है। किसने बताया मैं गुरुकरण नहीं किया? मेरा गुरु ही भागुर ऋषि है। गोपियों ने बताया इसका साक्षी कौन है? इसमें उत्तर दिया, आप लोग विश्वास ना हो आप मेरे पिता से सर पूछिए या मेरे गुरु भागुर से पूछिए, मुझे दीक्षा हूं और नहीं हूं तो पता चलेगा। इसलिए भगवान लीला किशोर कृष्ण आकर के दीक्षा लिया। बहुत से लोग कहते हैं नहीं शांतिपूर्ण का गुरु है, शांति में गुरु नहीं होगा, स्कूल टीचर है, यानी गुरुकुल के टीचर है। आइए त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी गुरु दीक्षा लेकर के जगत को शिक्षा दिया। बहुत से लोग दीक्षा के लिए आते हैं, गुरु से पूछते हैं गुरु जी हम पति पत्नी एक गुरु से कैसे दीक्षा ले, हम भाई बहन हो जाएंगे। तो गुरु जी कहते हैं अच्छा बेटा बताओ तुम अधिक बुद्धिमान हो या भगवान रामचंद्र जी बुद्धिमान थे? बोलते हैं नहीं गुरु जी, भगवान रामचंद्र जी बुद्धिमान थे। भगवान रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न और उनके पत्नियां सीता देवी, मांडवी, उर्मिला, सुप्रवृत्ति सब लोगों ने वशिष्ठ जी से दीक्षा ली। ये नहीं उनके पिताजी दशरथ महाराज जी, माताएं कौशल्या, कोई की सुमित्राएं सब वशिष्ठ जी से गुरु दीक्षा ली। पिताजी में भी जब मणिका पुष्प पर भगवान आते हैं और गुरु दीक्षा लेकर दिखाया कि गुरु दीक्षा ले अनिवार्य है। कली युग में आइए जब लीला पुरुषोत्तम पर प्रेम पुरुषोत्तम शिष्यों के नाम से जगत का आविष्कार किए और ईश्वर पूरी बात से दीक्षा लेकर के दिखाया कि गुरु दीक्षा बिना कोई गति नहीं है। शास्त्र में कहा गया बिना गुरु दीक्षा विहीनस्य न सिद्धि न सद्गतिम तस्मात् सद प्रजन्मेन पुनः दीक्षिता भवेत्। गुरु जी के दीक्षा के सिवाय कोई सिद्धि लाभ नहीं कर सकते हैं और सद्गति भी लाभ नहीं कर सकते। इसलिए मैं सर्व प्रकार से प्रयत्न करके गुरु जी को प्रसन्न करके उनसे दीक्षा ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो हमें सद्गति संभव नहीं है, ये अनिवार्य है। और इस समय हम सब जगह में देखते हैं पाश्चात्य की हवा बह रही है, कंप्यूटर का युग है, साइंस का युग है, तो रोगी का गुरु को गुरुकरण करते हैं और उनको विश्वास ना हो। हमारे बीच में देखिए कितने विभिन्न देश के सब बच्चे लोग बैठे हुए हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, उन लोगों को पूछिए गुरुकरण करना जरूरी है या नहीं है। वो भारतवासी ना होने पर भी आप लोगों को अच्छी तरह समझा देंगे, तब पता चलेगा गुरुकरण जरूरी है या नहीं। हमारे इसके परम गुरुदेव नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद मूर्ति प्रकरण के शुभ सही महाराज जैसा के प्रबंध लिखा, उसमें वो एक पाश्चात्य फिलोसोफर का कोटेशन दिया, उनका नाम था रेवरेंड बिशप। उसने बताया इंडिया गाइडेड बाय गॉड कैन लीड द वर्ल्ड बैक टू सैनिटी। इंडिया कैसे परिचालित हो रहा है? भगवान के द्वारा। और ऐसे कोई इंडिया का अनुसरण करें तो वो सुख शांति लाभ कर सकता है, क्योंकि जगत में हम जो कुछ देख रहे हैं व्यासदेव जी की जो वेद है उपनिषद है उसके भाषा का रूपांतर केवल है। जो कुछ आप साइंस का उन्नति देख रहे हैं अगर कोई वेद के मर्मों को समझ सकते हैं तो देख सकते हैं कि वेद में सब का सूत्र रूप में है, उसी को प्रकाश कर रहे हैं। अब हम लोग विमान देख रहे हैं, ये इंटरनेट देख रहे हैं। पहले जब भगवान रामचंद्र जी त्रेता युग में रावण को वध करने उपरांत अगर कोई प्रत्यावर्तन किया था कैसे आए, उसको विमान से आए, उस समय एरोप्लेन था। अब भागवत में देखिए त्रिपुरासुर के बारे में विमान का वर्णन है। और जो इंटरनेट देख रहे हैं जब परीक्षित महाराज जी 7 वर्ष का हुए थे उसमें कहा कंप्यूटर तो था नहीं ना टेलीफोन था, जब उन्हें अनशन कर लिया कि मैं प्राइवेशन कर रहा हूँ पृथ्वी में जहाँ से जितने भी मुनि ऋषि थे क्षण भर में उपस्थित हो कैसे आए। उस समय के इंटरनेट इतना उन्नत था कि हम अपने मन के द्वारा कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कहा रशिया के पास मंगोलिया है, सॉरी चीन के पास मंगोलिया है, उसे मंगोल ऋषि आए, किसी कैस्पियन से रशिया के पास उधर से आए, कैसे आ गए, क्षण भर में आ गए, ना ऐसे कंफर्ट विमान था ना इंटरनेट था, ये क्या है? अभी विज्ञान इसको समझा नहीं कर सकते हैं। हम कैसे समझ सकते हैं कि सदन चरण से किया जाए? तो ये गुरु कौन है? भगवान के कृपा धन मूर्ति। यदि भगवान को लाभ करना चाहते हैं तो गुरु चरण से करना ही पड़ेगा। कोई डायरेक्ट भगवान के पास जाए भगवान कृपा नहीं करेंगे। भगवान बोलते हैं प्रथमं तु गुरुं पूज्य ततश्चैव मम अर्चनं तदीशा भगवत भक्ति यन्नथा निष्फलो भवेत्। कोई गुरु पूजा भगवान की पूजा करना चाहते हैं, भगवान ने बताया बेटा अगर तुम मेरा पूजा करना चाहते हो प्रथमं तु गुरुं पूज्य, पहले तुम अपनी गुरु की पूजा करो, उनके आदेश दे करके तब मेरी पूजा करो। ऐसे करोगे तो क्या होगा, तदेशा भगवत भक्ति, तब भगवान की भक्ति होगी। ऐसा नहीं करोगे सब बेकार चला जाएगा। है कोई उदाहरण शास्त्र में? हाँ, ध्रुव महाराज को देखिए। ध्रुव महाराज जी अपने सतरी मां के द्वारा बांधित होकर के भगवान के द्वारा भित्त होकर के भगवान को पाना चाह, भगवान नहीं आ रहे हैं, भगवान छटपट कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा हे प्रभु आप ऐसे बेचैन क्यों हो रहे हैं? तो मेरा भक्त मुझे बुला रहे हैं, आप चले जाइए, देर किस लिए कर रहे हैं? मैं जा नहीं सकता। क्यों? उनका भी गुरुकरण नहीं है। पहले तो गुरुकरण हो तभी मैं जा सकता हूँ। नारद ऋषि को प्रेरणा देकर के भेजा, नारद ऋषि दीक्षित होने के उपरांत समय ने कंदर को भगवान को दर्शन मिला, इसे भगवान साक्षात जी दर्शन देते हैं। और गुरु को कैसे हमें प्रभाव करना चाहिए, आपको बंधु दान करके अपने प्राण का भी बंधु दान करके करना पड़ेगा। कभी भगवान रुक भी जाए गुरु जी मना लेते हैं, और गुरु जी रुक जाए तो भगवान मनाएंगे नहीं। और हम सोचते हो गुरु जी इच्छा हो गई है, क्या जरूरत सत्संग करने की, क्या जरूरत गुरु जी के पास जाने की, अपने भजन कर दूंगा, कोई चिंता नहीं, गुरु जी का संबंध नहीं रखा। ऐसे नहीं होगा। शास्त्र ने बताया कि नारायण अभिविक्तं जाति गुरु प्रतिपस्य दुरुद्धे तमलं जलादपेतं स्वस्यति रविर्न पश्यति। जैसे कमल का फूल पानी में खिलता है और जब सूर्य उदित होगा तभी ये कमल खिलेगा, रात में कमल नहीं खिलता है। तो एक व्यतिक्रम है, जन्माष्टमी के रात में कमल भी खिला था, और कहीं वर्णन नहीं है शास्त्र में। अगर इन कमल को पानी से निकल लिया जाए और धूप में रखा जाए खिलेगा नहीं, सुखा देगा वही सूरज, और पानी में रहने पर वही सूरज खिलाता है। ऐसे ही ये पानी कौन है, ये गुरु सदृश है। सूर्य कौन है, भगवत सदृश है। कमल कौन है, ये साधक जीव है। ऐसे जब हम गुरु जी के चरणासन करके रहेंगे तब भगवान की कृपा मुझ पर बरसेगा। अगर ऐसे न करे तो गुरु के साथ संबंध न रखे तो क्या होगा, वही भगवान हमें जला देंगे, कृपा नहीं करेंगे। इसलिए जो अभी तक सदगुरु चरण से नहीं किया हो तो उसको शांति कैसे मिलेगी। इसलिए चाहिए जो अभी तक सदगुरु चरण से नहीं किया है उनको जरूर सदगुरु चरणासन करके भजन करना चाहिए, तभी मानसिक शांति मिलेगी, आत्मिक शांति मिलेगी। इसके सिवा कोई और चारा नहीं है। वंचा कल्प करो पश्च कृपा सिंधु भय वच पतितान पावन भोग वैष्णव भो नमो नमो।
बहुत अच्छा। वेदों में ऐसा लिखा गया है जस देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता भारता प्रकाशन्ते महात्मनः। जैसे भगवान के प्रति हमारा प्रीति है, ठीक गुरु के प्रति भी वैसे ही प्रीति हो तो उस गुरु की कृपा से समस्त शास्त्र का जो तात्पर्य है कृष्ण की प्रेमा भक्ति उनकी सेवा सहज ही प्राप्त हो सकती है। हम लोग यहाँ यद्यपि जन्म हुआ है किंतु आत्मा का जन्म नहीं हुआ, हम लोग भगवान के नित्य दास दासी हैं, किंतु अपने स्वरूप को भूलने से इस जगत में आए हैं। करते हैं चेष्टा सुख के लिए किंतु संसारी कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। मैं जहां जहां विश्व में गया, अमेरिका और कहां कहां गया, यूरोप के देशों में भी गया, अभी नवद्वीप में गया, दिल्ली में गया, कलकत्ते में गए, यहाँ आया, बस रोना ही रोना। सब गृहस्थ लोग अपना दुख रोते हैं, मैं किसी तरह से सांत्वना देता हूँ किंतु फंसता नहीं, उनको दुखों को दूर करके यदि उसमें हम भी लग जाएं और उसकी चिंता करते तो गड़बड़ हो जाएगा हमारा, इसलिए उनको यथा योग्य सांत्वना देता हूँ। संसार यही है समझो, जेलखाने में कोई सुख खोजे तो वो मूर्ख है, वहां पर लड्डू पेड़ा रसगुल्ला चाहे और वातानुकूल ऐसा पंखा और एसी चाहे और आराम चाहे तो जेल में नहीं मिलेगा, तो ये तो जेल है। अपने अपने कर्मों का फल हम लोग भोग रहे हैं, इसलिए कोई धनी हो, अमीर हो, राष्ट्रपति हो, प्रेसिडेंट हो, सभी लोग जगत में दुखी रहे। इसीलिए कहा भागवत में तस्मात गुरु प्रपद्ये। तस्मात माने क्या, किस लिए? ये जब समझे संसार में सुख नहीं है, जब समझे हमारे पिताजी चले गए, उनके पिताजी चले गए, उन्होंने भी संसार किया किंतु सुखी नहीं रहे, बुढ़ापा है, बुढ़ापा का कष्ट उनको हुआ, शरीर छोड़ते बिलबिलाते हुए गए, और हम फिर विवाह शादी करके पुत्र उत्पन्न करके कन्या उत्पन्न करके सुखी रहना चाहते हैं, तो क्या है ये? मूर्खता है, इससे सुख नहीं होगा। रुपया सुख नहीं देगा, नहीं रहने से भी दुख, रहने पर भी दुख, चले जाने पर भी दुख, और उसे संग्रहित पत्नी पुत्र बागान पशु ये क्या हमें सुख दे? इसलिए जब समझे कि संसार में सुख नहीं है, विवाह शादी इत्यादि में सुख नहीं है, धन में सुख नहीं है, तस्मात गुरु, अब तब चलो, हमारा कैसे कल्याण होगा, इसमें तो सुख नहीं है गुरु जी, तब गुरु के पास में जाए। इसलिए अपना अंतिम कल्याण के लिए, ऐसा कल्याण जब फिर जगत में नहीं आना पड़े, फिर दुख न भोगना पड़े, इसलिए गुरु के पास में जाए, और उसका लक्षण हमारे माधव महाराज जी ने बतलाया कि गुरु कैसा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी के उपाख्यान में प्रहलाद जी ने कहा, लड़कों से हरि कथा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो बचपन से ही भगवान का भजन करो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, जब इसे ज्ञान हो जाए 5 वर्ष की उम्र से या 50 वर्ष की उम्र में, जब ही ज्ञान हो जाए, किंतु बचपन से ही भगवान का भजन, बुद्धि कोमल होती है उस समय में, वो बुद्धि ग्रहण कर लेती है, और 60 हो जाने पर सठी आ जाती है, वो बुद्धि नहीं आती, जिसमें रम जाते हैं उसमें रम जाते, बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए, और इसके बाद में मृत्यु का समय का 100 वर्ष आयु और इसका सब बतलाया, और अंत में बतलाया क्या, गुरु शुश्रूषा,
गुरु शुश्रूषा
गुरु भक्त्या, गुरु शुश्रूषा भक्त्या सर्वलाभार परेण च संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वरा आराधनेन च। गुरु की बंधुआ सेवा करनी चाहिए, हमारा यही कल्याण करने वाले माता पिता भाई बंधु से भी हमारे ये प्राण दिया, गुरु जो हमारा कल्याण करेंगे, माता पिता कोटि जन्मों में नहीं कर सकते, ये कल्याण करते हैं, भगवान से हमें संबंध दे देते हैं, तो उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करें, और जो कुछ हमारा है प्राप्त करते हैं इस जगत में, सबको गुरु को अर्पण करो, सर्वलाभा अर्पण ही नच, सब जो कुछ है उनको अर्पण कर दो। जैसे दशरथ महाराज जी ने राम के जन्म में अपना सब कुछ दान कर दिया वशिष्ठ को, तो वशिष्ठ जी ने ले लिया राज्यपाट, कह दिया हमारा हो गया, किंतु हमारा प्रतिनिधि होकर के राज्य को मैंने कभी मत समझना जो मैं इसका मालिक हूं। ऐसे ही समझो ये सबका मालिक कौन है, गुरु है। क्यों? उसके ऋण को हम कभी उतार नहीं सकते, इसलिए संगेन साधु, साधुओं के संग में रहो, गुरु की शुश्रूषा करो, सब दे दो। और जो साधु जो भगवान कृष्ण के पूर्ण आराधक हैं, शुद्ध प्रेमी भक्त हो, रसिक भक्त हो, उनके आश्रय में रह करके श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन ये सब करो। श्रद्धा तत्कथा, उनकी कथा में श्रद्धा रखो। यहाँ कहीं भी भागवत की कथा होती है, और यदि निष्कपट शुद्ध भक्त हो, अर्थ के लालसा वाले न हो, तो उनकी कथा सुनना चाहिए। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज, ऐसे उनकी श्रृंखला में जो सद्गुरु वैष्णव हैं उनसे हरि कथा सुनो, और उनके गुण कर्म इत्यादि का कीर्तन तुम भी करो, सुनो और दूसरों से बतलाओ। इस प्रकार से उनका ध्यान करो। हरि सर्वत्र हैं, हरि सर्वत्र हैं। कोई पूछे प्रहलाद से तुमने कहाँ से जाना अपने गुरु जी से, नारद जी से, समझा बिना ये गुरु के नहीं होगा। इसी प्रकार से एकादश स्कंद में भी कहा गया है, बतलाया कर्मणि आरोह मानाना, सब लोग मिल करके सुख के लिए काम करते हैं, सुख नहीं मिलता दुखी मिलता है। ऐसा कोई है अभी तो खूब सुखी हैं, अब बुढ़ापा आ जाएगा, दांत टूट जाएंगे, आंख की रोशनी कम हो जाएगी, उस समय क्या होगा, और मरने के समय क्या कष्ट क्या होगा, ये कोई भी नहीं हटा सकता। केवल हटा सकता है गुरु, उसके उपदेशों से पालन करने से हो सकता है। इस तरह से तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु, वही कथा है, बिना गुरु के कृष्ण से हमारा संबंध नहीं होगा, और हमारा यह दुखमय संसार से हमारी मुक्ति नहीं होगी, और कृष्ण की प्रेम नहीं होगा। असल में हम बतलाया कि हम भगवान के नित्य दास दासी हैं, जब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे, उनकी ब्रज में सेवा नहीं मिलेगी, तब तक हम सुखी और शांति नहीं रह सकते। ये गुरु का तात्पर्य है। इस प्रकार से गुरु के संबंध में आप लोगों ने सुना। सत्ययुग में भी हम देखते हैं अरुणी उद्दालक का, अरुणी गया गुरु के पास में, गुरु जी हमको उपदेश दीजिए जिससे संसार से हम तर जाए। गुरु जी ने कहा 25 वर्ष हमारे आश्रम में रहो और गैया चराओ, और गुरु की जो सेवा होती है घर की सब सेवा करो। 25 वर्ष तक सेवा किया। एक दिन शाम को हठात बादल उमड़ आए और मूसलाधार बरसने लगे। उसके पहले जबकि आकाश में मेघ छा गए, तो गुरुवाणी ने कहा जो सूखी लकड़ी तो है नहीं, रसोई कैसे बनेगी और यज्ञ कैसे होगा, बेटा जाओ और लकड़ी सूखी ये सब देख करके खेत में मेड़ बांधाना और उसमें पानी रुक जाएगा तो उसमें हम फसल उगाए। घना घोर वर्षा होने लगी और उसका बांध मेड़ का टूट गया और किसी प्रकार से रोक नहीं पाता। अंत में उस ठिठी उठी ठंड में स्वयं लेट गया पानी रोकने के। सवेरा हुआ ठिठुरता हुआ वो, उसका हृदय जम शरीर जम गया और गुरु जी उसको खोजते हैं, अरुणी तुम कहाँ है कहाँ है। क्षीण शब्द से बोले, गुरु जी मैं यहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो। तो मैं यहाँ मेड़ बन करके खुद ही और पानी रोक रखा हूँ। ओ छिठूटी टन में हमारी आज्ञा पालन करने के लिए खुद ही लेट गया, उठ करके आओ, उठ करके आया, उसी पर हाथ रख दिया। सब वेद शास्त्रों का जितना तात्पर्य है सब तुमको आ जाए। और एक क्षण में ऐसे उद्दालक नाम का एक लड़का था, गुरु के पास में गया। गुरु कहा, जी ने कहा 25 वर्ष रहो। पहले ऐसा ही नियम होता था, झट मंत्र और दीक्षा नहीं देते थे। हमारी गायों को चराना और 25 वर्ष के बाद में तब फिर तुमको हम बतलाएंगे। वो गायों को लेकर के चराने के लिए जाने लगा। कुछ दिनों के बाद में देखा कि वो मोटा ताजा हो रहा है। पूछा, जी अरे तुम बड़े तगड़े हो रहे हो, तुम क्या खाते हो। और गुरुजी, जबकि बछड़े दूध पी लेते हैं गायों का, जो बच रहता है उसी को मैं पी लेता हूँ। ओ ऐसा मत करना, जाओ खबरदार ऐसा नहीं करना, बछड़े मर जाएंगे। चला गया। दूसरे दिन तो गुरुजी ने मना कर दिया दूध पीने के लिए, फिर भी देखा जो मोटा ताजा है। कुछ दिनों के बाद में पूछा, अरे तुम कैसे क्या खाते हो जो मोटे तगड़े हो। तो उन्होंने कहा, गायें जबकि बैठ करके पागुर करती हैं तो यहाँ उनका फेन हो जाता है, मैं उसी फेन को चाट लेता हूँ। अच्छा खबरदार ऐसा मत करना, किंतु क्या करना ये नहीं बतला। फिर चले गए। अब इस बार गुरु जी ने तो भी मना कर दिया, भूख लगी है क्या करें। तो एक वन एक पत्ता होता है, वो बड़ा विषाक्त होता है, उसके पत्तों में दूध निकलता है। हाँ आकंद को ही एक वन का आँख का पत्ता कहते हैं। बस उसी को लेकर के पिया तो अंधे बन गए। और गाय तो चली आई कि तू वो गया नहीं, कुएं में गिर गया। गुरुजी खोजते हुए, अरे तू कहाँ है कहाँ है, मैं कुएं में गिर गया। कैसे गिर गया, आपने मना किया जे गायों का ये भी मतलब, तो मैं मुझे बड़ी भूख लगी तो इसी का हमने पी लिया, ले लिया रस, तो उससे मैं अंधा हो गया इसलिए कुएं में गिर गया। फिर गुरुजी ने उसको निकाला और हाथ रख कर कहे, जा हमारा आदेश तुमने पालन किया, इसलिए सारा वेद शास्त्र उपनिषद सभी आ जाए। ये गुरु की कृपा है। हमारे ऐसे ही त्रेता युग में देखा, ध्रुव जी भगवान को पाने के लिए जा रहे थे, किंतु नारद जी आए तब उनकी कृपा से हुआ। वाल्मीकि जी भी ऐसे ही भटक रहे थे, नारद जी मिले। व्यास जी भी कुछ गड़बड़ कर रहे थे, नारद जी आए और उनको दिशा निर्देश किए। इस तरह से हम देखते हैं, बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने भी गुरु कर्ण किया, भगवान होते हुए भी, कृष्ण भी भगवान होते हुए, राम भी भगवान होते हुए किया। इसलिए जब तक गुरु नहीं करेंगे और गुरु के अधीन हम उनके उपदेशों को पालन करके भजन नहीं करेंगे, तब तक संसार का दुख नहीं जाएगा। हम लोग समझते हैं कि ब्राह्मण कुल में आए हैं, धनी हैं, मानी हैं, सभी लोग हमको पुरोहित मानता है, तो हमको गुरु करने की जरूरत क्या है। और उधर देहात देह में अभिमान है जो मैं हूं, यही तो सब अनर्थों की जड़ है। जिसका जिसका इस शरीर में ये भाव है कि मैं हूं,
देहाभिमान है, ये सबसे बड़ा आलम्ब है। इसको छोड़ना बड़ा कठिन है, केवल गुरु ही छोड़ा सकता है, दूसरा नहीं छोड़ा सकता। एक कथा है, लौकिक कथा, इतिहास। कोई एक साधु संत थे, पहुंचे हुए थे। एक शिष्य गया, गुरुजी हमको दीक्षा मंत्र दी, ठीक है कल स्नान करके आना। तो उन्होंने, गुरुजी ने कह दिया कल हमारा एक कोई आएगा शिष्य बनने के लिए, झाड़ूदारनी को कह दिया, और सूखे पत्ते ले लेना, कोई गंदी चीज ना हो, उसमें थोड़ी धूल मिला लेना, और जब आएगा तो दूर से फेंक देना, और भाग जाना नहीं तो मारेगा। तो उसके अनुसार में वो, जब वो स्नान करके दीक्षा के लिए आया, तो वो झाड़ूदारनी ने टोकरी लेकर के उसके सामने ही फेंक दी, और धूल लगी। अब तो वो बड़ा क्रोधित हुआ, स्नान करके मैं आया ऐसा हो गया। फिर स्नान किया, गुरु जी के पास में आया, गुरु जी बोले अभी नहीं, अभी तुम्हारा क्रोध पूरा मात्रा में है, देह में अभिमान है इसलिए क्रोध है, मैं पवित्र हो गया, अपवित्र हूं, कुछ दिन के बाद में आना। फिर बहुत दिन हो गए, फिर इसके बाद में स्नान करके आया, तो उसने कहा जे देखो झाड़ूदारनी वो कल स्नान करने आएगा, और तुम बुहार करके और झोड़ी टोकरी में रखना, जब वो आए तो इस बार मारेगा नहीं, किंतु जरा सावधान रहना फेंक करके, जिससे कि धूल कुछ लग जाए। तो उसने ऐसा ही किया, तो वो देख करके बड़ा बिगड़ा, आंख क्रोध से लाल हो गई, और मारने के लिए दौड़ा नहीं, किंतु उसके तरफ में क्रोधित होकर के इस प्रकार देखने लगा, वो तो भाग गई। तीसरे दिन वो फिर गुरु जी के पास में गया, गुरु जी ने कुछ दिन के बाद में आना, अभी नहीं, अभी तुम्हारी क्रोध को जीत नहीं सके। तीसरी बार फिर कुछ दिनों के बाद में आया, उन्होंने झाड़ूदारनी को कहा जाए इस टोकरी में वही धूल और पत्ते लेकर के और उसके सिर के ऊपर में डालना। जब वो आया दीक्षा लेने के लिए स्नान करके, तो उसके ऊपर में वो टोकरी पूरी के पूरी धूल त्रूल समेत उसके ऊपर में फेंक दिया। जब फेंक दिया तो वो छुप करके उसको प्रणाम किया, कहा जे तुम हमारी गुरु तुम ही हो, तुमने हमको क्रोध दमन करना सिखलाया, अब ठीक है। तो गुरु जी ने कहा अब स्नान करने की जरूरत नहीं है, तुम उसी तरह से आ जाओ। ये ऐसे गुरु होते हैं, हमारे काम को क्रोध को सबको दमन करना सिखलाते हैं, कृष्ण से संबंध बतला देते हैं। यदि कोई अभिमान बस मैं बहुत ऊंचा हूं, आजकल देखेंगे जितने बड़े बड़े धनी लोग हैं, मानी लोग ही हैं, वो गुरु नहीं करते, किस लिए करेंगे, इसलिए बड़े दुर्भागा हैं। इसलिए हम पूर्व समय में देखते हैं, प्राचीन समय बड़े बड़े राजा लोग, महाराज जनक तक गुरु किया, और अब सब ऋषि महर्षि सब लोग गुरु किए। इसलिए हम लोग भी गुरु करके, भगवान का भजन करके, एक दूसरों से निवृत्त हो। कोई, हम जानते हैं कि संसार में बहुत समस्याएं हैं, लड़कियों को, विवाहित लड़कियों को भी है, लड़कों को भी है, आजकल दुनिया ही ऐसी बदल गई है, हम उस दुख में क्या कर सकते हैं, संतना तो दे सकते हैं, किंतु जब तक कि भगवान का भजन नहीं करेगा कोई, तब तक नहीं। इस दुख में भी कोई प्रतिकार न करके भगवान की कृपा मान करके और भगवान का भजन करना चाहिए, उसको भक्ति मिल जाएगी और उसके सारे दुख सदा के लिए मिट जाएगी। गौर प्रेमानंद।